अब 23वीं कारिका है जिसमें गीत लकारों के अर्थ बताए गए हैं। यो भूते प्रेरणादो च भूतमात्रे लंगादयः सत्याम क्रियातिपत्तो च भूते भाविनी लिंग स्मृतः। यहाँ भी इस कारिका में संक्षेप से अर्थ बताया गया। यो भूते यह आने वाले कल को श्वः कहते हैं और बीते हुए कल को यह कहते हैं। भूते भूत तो जानते हैं भूतकाल। प्रेरणादोच प्रेरणा आदि अर्थ जिसको हम विधि निमंत्रण आमंत्रण बोल रहे थे वही प्रेरणा आदि अर्थ है। भूतमात्रे लंगादेह भूतमात्र अर्थ में लंगादि लकार होते हैं। सत्याम क्रिया अतिपत्तौच अतिपत क्रिया की अतिपत्ति अतिपत्ति माने असिद्धि। क्रिया की अगर असिद्धि हो तो ऐसी स्थिति में भूते भाविनी लिंग स्मृतः भूत अर्थ में और भावी अर्थ में भावी अर्थ अर्थात भविष्य अर्थ में लिंग लकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो चार लकार हैं लुंग लंग लिंग लिंग इन चारों गीत लकारों के अर्थ बताए गए। अब एक एक करके अलग से बताया जाएगा। लंगर्थम आह यो भूत इति ये यो भूते जो कारिका में है ये लंग लकार का अर्थ है। यो भूते का अर्थ क्या होता है तो अनद्यतने भूते इत्यर्थ है। ऐसा भूतकाल जो अनद्यतन हो वह लंग लकार का अर्थ है। सूत्र है इसके लिए अनद्यतने लंग इति सूत्रात ये पाणिनि का सूत्र है। उदाहरण यथा अस्य पुत्रः अभवत इसका पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर अभवत में जो लंग लकार है इसका लंग लकार का अर्थ है अनद्यतन भूत माने इसको जो पुत्र जन्मा है ये 24 घंटे पहले जन्मा। जब ऐसा होगा तभी कहेंगे हम अस्य पुत्र अभवत। अगर 24 घंटे से पहले का पुत्र जन्मा हुआ है तो वहाँ पर लंग लकार का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वो फिर अद्यतन भूत होगा और जबकि लंग होता है किसमें अनद्यतन भूत में। अब लिंगार्थम आह प्रेरणादो इति लिंग लकार का अर्थ है प्रेरणा आदि अर्थ। वो प्रेरणा आदि अर्थ क्या है तो आगे सूत्र बताते हैं उसमें सारे अर्थ गिने गए हैं। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग इन अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग होता है। तत्र विधि ही प्रेरणम उसमें जो सबसे पहला शब्द है सूत्र में विधि उस विधि का अर्थ है प्रेरणम माने प्रेरणा। किसी क्रिया को करने के लिए जो प्रेरित किया जाता है उसी का नाम है विधि। जैसे भृत्य आदेह निकृष्टस्य प्रवर्तनम भृत्य आदि जो है भृत्य मतलब नौकर आदि से मतलब अपने से छोटी उम्र के लोगों को ले लीजिए तो भृत्य आदि जो है उनको जो निकृष्ट है निकृष्ट का मतलब खराब नहीं निकृष्ट का मतलब अपने से जो कम उम्र के हों उनको निकृष्ट यहाँ पर कहा गया है। तो भृत्य आदि जो निकृष्ट है उसको उसको प्रवर्तित करना किसी क्रिया में प्रवृत्त कराना यही जो है विधि का अर्थ होता है। तो इस अर्थ में लिंग लकार का प्रयोग होता है। दूसरा अर्थ है निमंत्रणम निमंत्रण भी लिंग लकार का अर्थ होता है ताकि निमंत्रण क्या का किसको कहते हैं तो नियोग करनम निमंत्रण का अर्थ होता है नियोग करण ताकि ये तो और कठिन अर्थ जो है बता दिया। निमंत्रण का अर्थ तो समझ में भी आ रहा था ये नियोग करण तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इस तो नियोग करण का अर्थ ये समझिए कि निश्चित रूप से किसी क्रिया में प्रवृत्त होने के लिए जो कहा जाता है जिसमें जिस क्रिया को करने के लिए करना आवश्यक होता है उससे आप भाग नहीं सकते हैं इस तरह का जो नियोग इस तरह की जो प्रवर्तना होती है इस तरह का जो प्रवृत्त कराया जाता है माने आवश्यक क्रिया को करने के लिए जो प्रवृत्त कराया जाता है उसी का नाम नियोगकरण है अथवा निमंत्रणम। उदाहरण दिया आवश्यक श्राद्ध भोजनादो दोहित्रादेह प्रवर्तनम प्रेरणा इत्यर्थ ताकि श्राद्ध भोजन आदि में जो आवश्यक होता है क्योंकि उसमें अगर श्राद्ध भोजन नहीं करेगा तो वह जो मृत आत्मा है प्रेतात्मा है उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो श्राद्ध भोजन आदि में जो दोहित्र आदि को पवित्र कराया जाता है दोहित्र कहते हैं बेटी के लड़के को दुहितुः अपत्यम दोहित्रः माने दुहिता मतलब बेटी बेटी के बच्चा जो है वह दोहित्र कहलाता है। तो दोहित्र आदि को जो है श्राद्ध भोजन में जो प्रवृत्त कराया जाता है उसी का नाम है नियोगकरण अथवा निमंत्रण। तो कुल मिलाकर के ये भी प्रेरणा अर्थ ही हुआ निमंत्रण। दोनों में अंतर यह है कि विधि ही निमंत्रणम के में विधि जो होता है वह अपने से निकृष्ट को प्रेरित करने के लिए होता है, अपने से कम उम्र वाले को प्रेरित करने के लिए होता है, और निमंत्रण जो है वो आवश्यक क्रिया के अंतर्गत आता है, वह करना ही करना होता है। फिर तीसरा है आमंत्रणम। आमंत्रणम का अर्थ बताया कामचार अनुज्ञा। कामचार माने स्वेच्छा, तो स्वेच्छा के अनुसार जो क्रिया में प्रवृत्त कराया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। शादी ब्याह सब में जो आमंत्रण कार्ड मिलता है वो कामचारानुज्ञा है, अर्थात हमने तो आपको न्योता भेजा है, आपकी इच्छा हो तो आइए स्वागत है, और इच्छा न हो तो नहीं भी आ सकते हैं, बहुत आवश्यक नहीं है। तो इस स्थिति में आमंत्रणम का अर्थ बताया कामचार अनुज्ञा। अनुज्ञा माने करना, कामचार माने स्वेच्छा से। तो स्वेच्छा से जो जहाँ पर क्रिया करने के लिए प्रेरित किया जाता है उसका नाम है आमंत्रण। फिर है अधिष्ठ। अधिष्ट अर्थ भी होता है लिंग लकार का। अधिष्ठ का अर्थ बताया सत्कार पूर्वक व्यापार, माने व्यापार माने क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें पहले सत्कार किया जाता हो तो उसको हम अधिष्ठ कहते हैं। अब ये जो चारों हैं विधि निमंत्रण आमंत्रण और अधिष्ठ, इन चारों में क्या होता है कि क्रिया करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और ये जो प्रेरित किया जाना है ना ये चारों में होता है, विधि हो निमंत्रण हो आमंत्रण हो और अधिष्ठ हो। तो इन चारों के में अगर एक समरूपता देखी जाए, एक समान धर्म अगर देखा जाए तो वह कौन सा समान धर्म होगा, तो वह है प्रवर्तनात्व धर्म। क्योंकि प्रवर्तनात्व धर्म जो है ये चारों में है, विधि निमंत्रण आमंत्रण और अधिष्ठ में। तो वही कहते हैं कि एतत् चतुष्टय, इन चारों में अनुगत प्रवर्तनत्वेन वाच्यता, इन चारों में प्रवर्तनात्व जो है वो अनुगत है। अनुगत है माने एक तरह से चारों में विद्यमान है, एक रूप से प्रवर्तनात्व धर्म चारों में रहता है। तो प्रवर्तनात्व जो है यही अर्थ अगर हम मान लें, एक ही अर्थ मान लें, तो चार अलग अलग अर्थ मानने की जरूरत नहीं है, इसी एक अर्थ में चारों अर्थों का अंतर्भाव हो जाएगा लाघवात, और ऐसा करने से लाघव भी होगा, माने कम भार जो है ढोना पड़ेगा। एक अर्थ मानने में या चार अर्थ मानने में, तो एक अर्थ आने में तो लाघव होगा ही ना, चार अर्थ मानने में गौरव होगा। उक्तंच, ताकि बाक्यपदी में भी कहा गया कि अस्ति प्रवर्तनारूपम अनुस्यूतम चतुर्सु अपि, माने चारों अर्थ जो है विधि निमंत्रण आमंत्रण और अधिष्ठ, इनमें प्रवर्तनारूप धर्म जो है ये चारों में अनुस्यूत है। अनुस्यूत है माने चारों में ये धर्म युक्त है, रहता है। तत्रैव लिंग विधातव्य, उस तत्रैव माने प्रवर्तना अर्थ में ही जो है लिंग लकार का विधान करना चाहिए। किम भेदस्य विवक्षया, फिर ये जो विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ इस तरह से चार अर्थ का भेद करके जो विवक्षा किए हैं, विधान किए हैं, इसकी जरूरत क्या है, ऐसा प्रश्न उठाया गया बाक्यपदी में। और उस प्रश्न का उत्तर दिया गया बाक्यपदी में ही कि न्याय व्युत्पादनार्थम वा, ये जो भेद की विवक्षा की गई, अर्थ भेद की विवक्षा चार तरह की, ये न्याय के व्युत्पादन करने के लिए विवक्षा की गई है। अब आपके मन में न्याय के व्युत्पादन के, व्युत्पादन माने प्रतिपादन कह लीजिए, तो न्याय के प्रतिपादन करने के लिए इसकी विवक्षा की गई है। अब ये न्याय का क्या, न्याय का प्रतिपादन का तात्पर्य क्या है, तो न्याय का यहाँ पर दो अर्थ लिया जाता है। न्याय का एक अर्थ लेते हैं शक्ति, तो शक्ति के प्रतिपादन के लिए, माने लिंग शब्द जो है, लिंग शब्द की शक्ति इन चार अर्थों में रहती है, विधि अर्थ निमंत्रण अर्थ आमंत्रण अर्थ और अधिष्ठ अर्थ, इन चारों अर्थों में लिंग पद की शक्ति है, इसके व्युत्पादन के लिए, इसके प्रतिपादन के लिए अर्थ भेद की विवक्षा की गई है। एक तो ये व्याख्या है। दूसरी व्याख्या होती है कि जो सामान्य धर्म होता है और विशेष धर्म होता है, दो तरह के धर्म है, तो सामान्य धर्म व्यापक होता है और विशेष धर्म जो है वह व्याप्य होता है। माने सामान्य धर्म सब में रहने वाला धर्म होता है और विशेष धर्म जो है वह एक एक में रहने वाला धर्म होता है। यह जो न्याय है, यह जो सिद्धांत है, नियम है, इस नियम को ही बताने के लिए यहाँ पर अर्थभेद की विवक्षा की गई। तो दो तरह से विद्वान लोग इसकी व्याख्या करते हैं न्याय उत्पादनार्थम का। तो वह जो सवाल किया गया था कि एक ही अर्थ मान लेने से काम चल जाएगा, प्रवर्तनात्व तो अर्थ में लिंग लकार हो ऐसा कहने से काम होगा, चार अर्थ मानने की क्या जरूरत थी, तो उसका एक उत्तर ये हुआ कि न्याय उत्पादनार्थम, माने न्याय के प्रतिपादन करने के लिए, न्याय को बताने के लिए इस तरह से चार अर्थ बताए गए हैं। तो यहाँ पर दो व्याख्या मैंने बताई, न्याय का अर्थ शक्ति करके, माने चारों अर्थों में शक्ति है इसको बताने के लिए कहा गया। और दूसरी व्याख्या में था कि सामान्य धर्म व्यापक होता है और विशेष धर्म व्याप्य होता है, इस बात को बताने के लिए इस तरह से अर्थ का भेद किया गया। अब दूसरा उत्तर देते हैं, प्रपंचार्थम अथापि वा, कि प्रपंच के लिए भी जो है ये चार भेद किए गए हैं। प्रपंच का अर्थ यहाँ पर जो लोक में प्रचलित अर्थ है वो नहीं लेना है, नहीं कहते हैं कि ये प्रपंच करता है, माने किसी को नीचे दिखाने के लिए कुछ गलत काम करता है उसको प्रपंच कहते हैं लोक में, लेकिन वह वाला प्रपंच यहाँ नहीं है। शास्त्र में जो प्रपंच शब्द का प्रयोग होता है वो विस्तार अर्थ में होता है, तो शास्त्र के विस्तार करने के लिए ये चार अर्थों की विवक्षा की गई है। विस्तार में क्या होता है कि स्पष्टतया बोध कराने के लिए उसको जो है ना बड़ा बना करके, किसी छोटी बात को बड़ा बना करके बताते हैं ताकि स्पष्टतया जो है सबको बोधगम्य हो जाए, सबको प्रतीत हो जाए। तो वही प्रपंच करने के लिए माने ये जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसको विस्तारित करने के लिए, प्रपंच माने विस्तार, तो विस्तारित करने के शास्त्र के की बात को विस्तारित करने के लिए इस तरह से अर्थभेद की विवक्षा की गई है। विद्यादीनाम उपादानम चतुर्णाम आदि तकृतम, और तो ये दो उत्तर हुए कि न्याय उत्पादन के लिए और प्रपंच के लिए ही जो है इन विधि आमंत्रण अधिष्ठ और निमंत्रण इन चारों अर्थों का यहाँ पर उपादान किया गया। उपादान माने ग्रहण किया गया, किसमें? विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग, यह जो पाणिनि का सूत्र है इसमें इन चारों का इसीलिए उपादान हुआ। चतुर्णाम आदि तक कृतम, इसीलिए आदि से जो चार हैं उनका ग्रहण सूत्र में किया गया। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि दोनों तरीके से हम कह सकते हैं कि लिंग का अर्थ प्रवर्तनात्व होता है, ये भी कह सकते हैं, और लिंग का अर्थ विधि निमंत्रण आमंत्रण और अधिष्ठ होता है, ये भी कह सकते हैं। एक अंतर है दोनों में, प्रवर्तनात्व अर्थ मानने में लाघव है और विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ अर्थ मानने में गौरव है। अब आगे विचार करते हैं कि ये जो प्रवर्तनात्व अर्थ आपने कहा, ये प्रवर्तनात्व होता क्या है, प्रवर्तना का लक्षण क्या है? तो प्रवर्तना का लक्षण आगे बताते हैं, प्रवृत्ति जनक ज्ञान विषयता अवच्छेदकत्वम प्रवर्तनात्वम। प्रवृत्ति जनक जो ज्ञान, प्रवृत्ति समझते हैं ना, किसी क्रिया को जो करना है उसको हम प्रवृत्ति कहते हैं। तो क्रिया को करने के लिए जो जनक ज्ञान है, माने क्रिया को करने के लिए उकसाने वाला जो ज्ञान है, प्रेरित करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो विषय होगा जिसके बारे में वह ज्ञान होगा, जैसे कहेंगे कि आप पढ़िए आप लिखिए, तो वहाँ पर पढ़ना लिखना जो है वो प्रवृत्ति जनक ज्ञान का विषय हो गया, और विषय में विषयता रहेगी, उसका जो अवच्छेदक रहेगा होगा उसको कहेंगे प्रवर्तना, और अवच्छेदकत्व को कहेंगे प्रवर्तनात्व। कुल मिलाकर के प्रवृत्ति जनक ज्ञान का जो विषय है उसी को हम प्रवर्तना कहते हैं, माने किसी क्रिया में प्रवृत्त करने के लिए जो हम ज्ञान कराते हैं कि बेटा इस काम को कर लो, उस ज्ञान का जो विषय होगा उसी का नाम है प्रवर्तना। तच्च इष्ट साधनत्वस्य अस्ति इति तदेव विद्यार्था। अब इस तरह का जो विषय है वह है प्रवर्तना, माने प्रवृत्ति जनक ज्ञान का जो विषय है वह प्रवर्तना है, तो वह ऐसा विषय कौन होगा? तो इसके लिए कहते हैं कि तच्च इष्ट साधनत्वस्य अस्ति, माने यह जो विषय है वह इष्ट साधनत्व को ही जो है हम प्रवर्तना कहते हैं, वह इष्ट साधनत्व ही जो है प्रवृत्ति जनक ज्ञान का विषय होता है। ताकि ये इष्ट साधनत्व क्या है, तो इष्ट मतलब जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं वह उसको कहते हैं इष्ट, और इष्ट का साधन माने जिस साधन के द्वारा उस इष्ट की प्राप्ति होगी वह हो गया इष्ट का साधन। तो जैसे इस क्रिया को करने से हमें ये लाभ मिलेगा, इस तरह का जो ज्ञान है उसी को कहते हैं इष्ट साधन का ज्ञान होना। तो जब तक व्यक्ति को ये नहीं पता चले कि इस काम को करने से मुझे ये लाभ मिलने वाला है, तब तक व्यक्ति उस काम को नहीं करेगा। तो प्रवर्तनात्व जो है वह उसका अगर पर्यायवाची शब्द कहना चाहें तो उसका पर्यायवाची शब्द होगा इष्ट साधनत्व। तो प्रवर्तनात्व लिंग लकार का अर्थ है, और प्रवर्तनात्व क्या है उसके लिए लक्षण तो बताया, प्रवृत्ति जनक ज्ञान विषयता अवच्छेदकत्वम, और उसको संक्षेप में सार में बताने के लिए कहा कि इष्ट साधनत्व जो है वही प्रवर्तनात्व है, माने इष्ट के लिए जो साधन होना है उसी का नाम है प्रवर्तनात्व। इस तरह से प्रवर्तनात्व के बारे में विचार करके आगे फिर विचार करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ समझा देता हूँ पहले कि शास्त्रांतर में तीन तरह के ज्ञान का विषय जो है उसको प्रवर्तनात्व माना गया है। एक तो जैसे इष्ट साधनत्व बताया, इष्ट साधनत्व का अर्थ बताया कि इस काम को करने से मुझे इस इष्ट की प्राप्ति होगी, यह है इष्ट साधनत्व का ज्ञान। दूसरा है कृति साध्यत्व, कृति कहते हैं प्रयास को, यत्न को, कि यह मेरे प्रयास के द्वारा साध्य है, माने मैं अगर कोशिश करूँगा तो मेरी कोशिश से ये चीज़ हमें मिल सकती है। इस तरह का जो ज्ञान है इसी को कहते हैं कृति साध्यत्व का ज्ञान, तो इसको भी प्रवर्तनात्व लोग मानते हैं। और तीसरा है कि बलवत अनिष्ट अननुबंधित्व ज्ञान, माने इस काम को करने से जितना मुझे फायदा होगा उसमें नुकसान जो है उससे कम होगा। इस तरह का ज्ञान जो है उसी को कहते हैं बलवत अनिष्ट अननुबंधित्व ज्ञान, और इन तीनों ज्ञानों को प्रवर्तना कहा जाता है। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, इष्ट साधनत्व ज्ञान, कृति साध्यत्व ज्ञान और बलवत अनिष्ट अननुबंधित्व ज्ञान, ये तीनों ज्ञान जो हैं ये प्रवर्तना कहलाते हैं, ऐसा न्यायिकों का कहना है या और किसी शास्त्र में भी इस तरह से माना गया है। लेकिन व्याकरण लोग केवल इष्ट साधनत्व ज्ञान को ही प्रवर्तना मानते हैं, कृति साध्यत्व के ज्ञान को और बलवत अनिष्टानुबंधित्व ज्ञान को नहीं मानते हैं। कृति साध्य तो माने मेरी कृति के द्वारा, मेरे प्रयास के द्वारा ये साध्य है, माने ये संभव है, ये हो गया कृति साध्यत्व का ज्ञान। और बलवत अनिष्ठान अनुबंधित्व ज्ञान मतलब ये जो है इस क्रिया से मुझे लाभ ज्यादा होगा नुकसान कम होगा, इस तरह का जो ज्ञान है वह है बलवत अनिष्ट अननुबंधित्व ज्ञान। तो इसका खंडन यहाँ पर भूषणकार कर रहे हैं कि इष्ट साधनत्व ज्ञान जो है वही प्रवर्तना है, कृति साध्यत्व और बलवत अनिष्ठान अनुबंधित्व ज्ञान ये प्रवर्तना नहीं है। उसका वही कह रहे हैं कि यद्यपि एतद् कृति साध्यत्वस्व अपि, माने कुछ लोगों के मत में कृति साध्यत्व में भी प्रवर्तना तो रहता है, फिर भी तज ज्ञानस्यापि प्रवर्तकत्वात्, माने वह ज्ञान भी प्रवर्तक होता है, माने प्रेरित करता है कि यह मैं कोशिश करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा, इस तरह का ज्ञान भी प्रवर्तक होता है, प्रेरित करता है। तथापि फिर भी यागादो सर्वत्र तल्लुकतः एव लभ्यते इति अन्य लभ्यत्वात् न तच्छक्यम्, फिर भी याग आदि माने यज्ञ आदि जो करते हैं उसमें लोक में ये देखा जाता है कि इस यज्ञ को कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, तो ये कर सकने वाली बात जो है इस या लोक से ही सिद्ध है या व्यवहार से ही सिद्ध है, इसको शब्द के द्वारा बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लिंग लकार के द्वारा कृत साध्यत्व अर्थ जो है नहीं बताया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। और यही चीज जो है बलवत अनिष्ट अनुबंधित्व ज्ञान में भी है कि ये भी बात जो है लिंग लकार के द्वारा बताने की जरूरत नहीं है। अगर द्वेष का अभाव है अर्थात कोई दुश्मनी नहीं है कोई शत्रुता नहीं है तो इस स्थिति में बलवान अनिष्ट वहाँ पर नहीं होता है, माने अधिक नुकसान नहीं होता है, लाभ ही अधिक होता है, ये बात भी जो है स्वतः सिद्ध है, इसको अलग से लिंग लकार के द्वारा बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा कह करके भूषणकार ने कहा कि इष्ट साधनत्व जो है वही प्रवर्तनात्व है, कृति साध्यत्व और बलवत अनिष्ट अनुबंधित जो है वह प्रवर्तनात्व नहीं है, ऐसा कह करके यहाँ पर विचार किया। और आगे कुछ और कहेंगे उसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।